मेट्रो लाइफ लेकर आए हैं आपके लिए
ग्रहों का खेल
विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर जगजीत।
एकत्रित हुई पीड़ा व्यक्ति को मृत्यु की ओर धकेलती है। पीड़ा का एक भारी झटका तत्काल मृत्यु का कारण बन सकता है। पूरे जीवन काल के दौरान मिली थोड़ी थोड़ी पीड़ा जीव को धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाती है। आखिरकार पीड़ा है क्या? पीड़ा किसी हानि के कारण प्राप्त होने वाली चेतावनी है। जीवित प्राणी के अंदर एक स्वचालित खतरे की घंटी जैसी प्रक्रिया काम करती है, जो उसे सूचित करती है कि उसका कोई भाग या वह समूचा ही संकट में है और बेहतर होगा कि वह इस बारे में कुछ करे या फिर मरने के लिए तैयार रहे। पीड़ा का संकेत मिलने का अर्थ है कि जीव किसी विनाशकारी शक्ति या वस्तु के समीप है। पीड़ा की अपेक्षा करना उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। पीड़ा वह चाबुक है जो व्यक्ति को तपती आंच से बर्फीली ठंड से दूर हटाने का काम करती है। पीड़ा जीवन की निरंतरता के प्रति खतरा उत्पन्न हो जाने की आशंका है। जीवित रहने के प्रयास में हुई गलतियों के लिए दी गई सजा है। पीड़ा की उपस्थिति हमेशा हानि का ही संकेत है। उंगली के जल जाने का अर्थ है कि शरीर अपनी उंगली की सतह पर स्थित कोशिकाओं को नष्ट कर चुका है, वे कोशिकाएं मर चुकी हैं। सिर पर लगी चोट का अर्थ है कि चोट के स्थान पर कोशिकाएं मर चुकी हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जीवन को मृत्यु स्रोत उसके कहीं समीप होने की चेतावनी मिल जाती है और इसलिए वह उससे दूर हटने का प्रयास करता है। किसी प्रियजन का निधन हो जाना भी उत्तरजीविता यानी जीवन की निरंतरता में बाधा है। किसी स्वामित्व या संपत्ति का ना रहना भी जीवन सामर्थ्य का कम होना है। इस प्रकार व्यक्ति शारीरिक पीड़ा और अपनी उत्तरजीविता से जुड़े दूसरे जीवों या वस्तुओं की क्षति के बीच भ्रमित हो जाता है। यही मानसिक पीड़ा का कारण है। बहुत ही खूबसूरत विचारों के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम को जगजीत जी के साथ शुरू करते हैं। जगजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार जी।
जगजीत जी, हम लोगों ने अपने पिछले प्रोग्राम में भी स्टार साइन के बारे में लोगों ने क्वेश्चन किए थे, हमने आपसे उनके बारे में जानकारी ली थी, तो इस बार भी मैं चाहती हूँ कि अपने प्रोग्राम की शुरुआत में हम लोग जो लिसनर्स के क्वेश्चन है उनके स्टार साइंस के बारे में आप उनके बारे में हमें कुछ और जानकारी दें।
जी हाँ, जैसे लिसनर्स ने वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के बारे में जानना चाहा है। अगर मैं होरोस्कोप की बात करूं तो जो वृश्चिक राशि है या स्कॉर्पियो है उसके जो स्वामी है वो है मंगल। अगर मैं मंगल की बात करूं या मार्स की बात करूं तो वो होरोस्कोप में बहुत सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारी जो विल पावर स्ट्रांग रहती है उनको भी रिप्रेजेंट करता है, मंगल ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं लाल किताब की बात करूं, जब मंगल बुरे भाव में रहता है या बुरे ग्रहों की दृष्टि में रहता है, मंगल बद माना जाता है। और ये भी देखने में आया है कि जब मंगल पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव रहता है और अच्छे भाव में रहता है तो जातक जो है वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, वो दिल का अच्छा होता है और वो किसी ना किसी देश सेवा के लिए जो भी जॉब रहती है, अपने कर्तव्य है, उसको जरूर निभाता है। और ऐसा देखने में आया है कि जब मंगल बद रहता है या मंगल पर बुरे ग्रहों की दृष्टि रहती है, मंगल डेबिलिटेट रहता है तो इंसान के जो विचार हैं वो अच्छे नहीं रहते। और ये भी देखने में आया कि जब कुंडली मिलान की जाती है तो मंगल की स्थिति देखी जाती है कि मंगल डेबिलिटेट है या नहीं है या मंगल दोष है, तो मंगल को काफ़ी कंसिडर किया जाता है। और मंगल जैसे मैंने बताया कि हमारे ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर देखा जाए तो हेल्थ की प्रॉब्लम हमेशा ब्लड से जरूर रहती है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बात कर रहा था कि स्कॉर्पियो राशि की, अगर इस राशि के जो जातक है अपनी जिंदगी में अगर रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या घर में रेड कलर के कर्टन यूज़ करते हैं कभी, या फिर अपने जो कपड़े धारण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं लाल कलर का यूज़ करते हैं तो ये भी अच्छा माना जाता है। और ये भी है कि जब मंगल बुरे ग्रहों के प्रभाव में होता है तो हम अच्छे ग्रहों की, उसके मित्र ग्रहों की जो चीज़ें हैं धारण करते हैं, उससे मंगल को हमेशा सपोर्ट मिलती है। और कई बार ऐसा रहता है कि इस राशि के जातक कहीं ना कहीं कभी हेल्थ की प्रॉब्लम भी रहती है, तो उस वक्त अगर हनी का सेवन थोड़ा थोड़ा किया जाए, यानी कि शहद लिया जाए चाहे हाफ चम्मच ही लिया जाए, तो वो भी अच्छा माना जाता है। और कई बार ऐसा भी देखने में आया कि अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती या दूसरे भी कुछ ऐसे योग बन रहे होते हैं तो इंसान को जो मानसिक शांति है ये नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है घर में बैठे झगड़ा किसी बात पर शुरू हो जाता है, तो उस वक्त अगर हम किसी भी चांदी के बर्तन में या उसमें हनी डालकर उसको बंद करके घर में कहीं भी स्थापित करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इस राशि के जो अगर उत्तम दान की मैं बात करूं तो किन चीज़ों का दान करना चाहिए, अगर धर्म स्थान पर जाकर वहां भगवान श्री हनुमान जी की अर्चना पूजा करते हैं और वहां लड्डू का जो प्रसाद है ये अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और इस जो राशि के जातक हैं तो मैंने यह भी कहना चाहूँगा कि इन्हें हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि मंगल डेबिलिटेट होता है या मंगल राहु का संबंध रहता है तो उस वक्त इंसान को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो इन्हें अपने क्रोध पर ज़रूर संयम रखना चाहिए। और अगर हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो ज़रूर अगर हमारे होरोस्कोप में कहीं ना कहीं मंगल के बुरे प्रभाव रहते हैं उनको हम अच्छे प्रभाव का जो फल है ये प्राप्त करने की जो कोशिश है ये जरूर कर सकते हैं। जी
उम्मीद करते हैं कि लिसनर्स ने जो भी आपसे ये पूछा था उन्होंने जरूर जानकारी ले ली होगी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। और भी बातें करते हैं जगजीत जी के साथ, और उससे पहले हम लोग आपकी डिटेल्स लिसनर के साथ शेयर कर देते हैं ताकि जब भी वो चाहें आपसे संपर्क बना सकें, आपसे अपने सवालों के जवाब ले सकें। तो जगजीत जी से बात करने के लिए उनका मोबाइल है 02103901113, उनका लैंडलाइन है 09278785 एंड ईमेल है info@astrologerjagjeet.com।
कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा जन्म मानव का लेके दया ना करी फिर मानव कहलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा करते हुए ये ख्याल आ गया ओ मैंने दान किया मैंने जप तप किया दान करते हुए ये ख्याल आ गया कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं दान लाखों का करने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नहाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बात अमृत पिलाने से क्या फायदा पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया मैंने वेद पढ़े मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।
हम लोग पीड़ा के ऊपर बात कर रहे थे। अनेक मौलिक खोजों में से एक खोज यह थी कि अचेतना और इससे संबंधित सारी पीड़ा मन के एक हिस्से में एकत्रित हो जाती है और यह पीड़ा तथा अचेतना तब तक एकत्र होते चले जाते हैं जब तक कि ये जीव को मरने के लिए मजबूर नहीं कर देते। एक दूसरी खोज यह थी कि इस पीड़ा को निष्प्रभावी करने के साथ ही संपूर्ण चेतना की वापसी और बेहतर जीवन सामर्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में वर्षों से एकत्रित अचेतना और पीड़ा को निष्प्रभावी करके व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बहाल करना संभव हो गया है। एकत्रित शारीरिक पीड़ा तथा क्षति के कारण चेतना में कमी आ जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य गिर जाता है और जीवित रहने की इच्छा शक्ति में इस सीमा तक कमी आ जाती है कि जीव सक्रिय रूप से या अक्सर गुप्त रूप से मृत्यु की इच्छा करने लगता है। जीवन भर की शारीरिक पीड़ा और जीवन पर्यंत एकत्रित हुई हानि को मिटा दीजिए या निष्प्रभावी कर दीजिए और देखिए किस प्रकार से जीवन का तेज फिर से वापस लौट आता है। जीवन की ऊर्जा तथा जीवन सामर्थ्य की उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करने का प्रयास ही जीवन है। और जगजीत जी से बातें करते हुए हम फिर से जगजीत जी के साथ हो जाते हैं। और जगजीत जी, आज का आप जो दूसरा स्टार साइन है हमारे लिसनर्स के लिए, कौन सा पढ़ के बताने वाले हैं?
जी हाँ, जैसे कि धनु, यानी कि अगर मैं सैजिटेरियस के विषय में बात करूं तो इस राशि को या इस स्टार साइन को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं वो है जुपिटर। अगर हम होरोस्कोप की बात करते हैं तो जुपिटर हमारे होरोस्कोप में बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अगर बोलूं कि किसी भी लड़के का होरोस्कोप है तो उनके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और जो बृहस्पति है ये येलो कलर को भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये भी कहा गया है कि लाल किताब की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कि अगर होरोस्कोप में बृहस्पति की जो पोजीशन है ये अच्छी रहती है तो कुंडली के बहुत सारे जो दोष हैं ये दूर हो जाते हैं। और जो बृहस्पति है ये हमेशा हमारा जो जीवन है, जीवन जीने का जो ढंग रहता है अच्छा, उसको जरूर सिखाता है, क्योंकि बृहस्पति को फ्रेश एयर माना जाता है। जैसे कि राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है, राहु का कड़वा धुआं रहता है और बृहस्पति हमेशा फ्रेश एयर रहती है। और अगर मैं होरोस्कोप की बात करूं, जैसे कि पीपल का जो पौधा रहता है वो हमेशा फ्रेश एयर ही हमें प्रदान करता है, वो भी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति जीवन को हमेशा आगे बढ़ाता है, क्योंकि जो भी मैं ये बोलूं कि जीवन को आगे बढ़ाने की मेडिसन्स भी रहती हैं उनमें भी पीपल के जो पत्ते हैं उनका भी यूज किया जाता है। तो बृहस्पति जैसे गोल्ड को भी, बहुत सारी चीजों को बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अगर होरोस्कोप में जुपिटर की पोजीशन अच्छी रहती है तो इंसान के जो विचार होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति का ज्यादा रहता है। और इस राशि के जातक अगर अपनी जिंदगी में पीले रंग यानी कि येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। कई बार देखने में आया कि बृहस्पति डेबिलिटेट रहता है या बृहस्पति राहु के साथ रहता है, जब बृहस्पति राहु का योग बनता है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता, एक तरफ से चंडाल योग माना जाता है, या बृहस्पति पर बुरे ग्रहों की दृष्टि रहती है। तो कई बार ऐसा भी देखने में आया कि अगर बृहस्पति का भाव बुरा है तो पिता को जो कष्ट है ये जरूर मिलने के जो योग हैं ये बनते हैं। तो मैंने ये कहना चाहूंगा कि इस राशि के जातक अगर अपनी पिता की दी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इवन कि अगर पिता के कपड़ों का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने फादर के बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि इस राशि के जातक अगर घर में इकट्ठे बैठते हैं तो इकट्ठे नहीं बैठ पाते, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो कई बार ऐसा ध्यान जाता है कि भाई घर में खुशहाली नहीं है, इस घर में ये वास्तु दोष है, और उस वक्त अगर किसी भी चांदी के बर्तन में हल्दी डालकर उसको घर में कहीं स्थापित किया जाए तो ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से जो वास्तु दोष है वो काफी हद तक दूर हो जाते हैं। और इस राशि के जातक, जैसे कि मैंने बोला कि बृहस्पति जो फ्रेश एयर को भी रिप्रेजेंट करता है और कई बार हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो उस वक्त अगर शावर लेने से पहले चाहे एक चम्मच दूध डालकर शावर लिया जाए तो ये भी बहुत बढ़िया माना जाता है। और इस राशि का जो उत्तम दान है वो दही, आलू, कपूर, घी, इन चीजों का अगर हम धर्म स्थान पर जाकर दान करते हैं तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है। और इस राशि के जातक अगर कोई तीर्थ स्थान पर जाना चाहता है और उसकी मदद करते हैं, चाहे फाइनेंशियली मदद करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है। और दूसरे व्यक्तियों को कभी भी तीर्थ स्थान पर अगर वो यात्रा करना चाहते हैं तो उनसे मना नहीं करना चाहिए, इवन की मदद ही उनकी करनी चाहिए। और कई बार इस राशि के जातक अगर बच्चों से प्रॉब्लम रहती है या बच्चों की हेल्थ नहीं है या कई बार स्टडी में अच्छे नहीं रहते, उस वक्त अगर घर में येलो फूल लगाए जाएं तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है।
जी जगजीत जी, आपसे और भी बातचीत करते हैं छोटा सा प्यारा सा भजन सुनने के बाद, और फिर अपने इस प्रोग्राम में जो हमारा आज का हॉरोस्कोप है उसको शामिल करते हैं।
जग की है जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियार चेहरे हजार मिले। यहाँ सुख से सौ गुनी पीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। तो एक सुखी यहाँ लाखों में, दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, ते तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल रे कुटीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। एक हंसता है दस रोते हैं। एक हंसता है दस रोते हैं। एक हंसता है दस रो।
वक्त हो गया है कि हम अपने प्रोग्राम में आज का जो हॉरोस्कोप है उसको शामिल करें। तो जगजीत जी, आज आप हमें कौन सा हमारे साथ जो हॉरोस्कोप है शेयर करने वाले हैं?
जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 4/4/1984
जी,
और इनका जो क्वेश्चन है फाइनेंस के विषय में है और जॉब के। सबसे पहले इनके होरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति है वो मैं बताना चाहूंगा। इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है सूर्य, और सूर्य की स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी नहीं है, अष्टम भाव में है ये और शुक्र के साथ हैं। और इनके होरोस्कोप में अगर मैं चंद्र की बात करूं, चंद्र एग्जाल्टेड जरूर हैं लेकिन जब राहु के साथ रहते हैं तो अच्छा योग नहीं माना जाता। और ऐसे ही मंगल केतु का जो योग है ये भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार मंगल केतु का जब ऐसा योग रहता है तो इंसान को कहीं ना कहीं हेल्थ से जो प्रॉब्लम है ये रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटी एज में ही इंसान को बीपी या डायबिटिक्स ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। पर इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूं शनि की जो स्थिति है ये काफी अच्छी है, एग्जाल्टेड है। तो मैं सबसे पहले इन्हें यही कहना चाहूंगा कि इनका जो जॉब के रिगार्डिंग है तो इन्हें अपनी जॉब से टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद ही जो चीजें नहीं भी होनी होती उन्हें सोचना शुरू कर देता है और खुद ही कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देता है। कई बार ऐसे योग में ये भी देखने में आया है कि इंसान की जॉब चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, सपोर्टिव जॉब मिलती हो, लेकिन फिर भी इंसान अपनी जॉब से खुश नहीं रहता, खुद ही कोई ना कोई उसमें ऐसा दोष निकालना शुरू कर देता, भाई इसका प्रेशर है या वो है। तो सबसे पहले मैं इन्हें यही कहना चाहूंगा जहां भी जॉब करते हैं जॉब इनकी हमेशा अच्छी ही रहेगी, इन्हें अपनी जॉब से हमेशा खुश रहना चाहिए। और दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि मंगल केतु के जो योग हैं अच्छे नहीं है, इन्हें अपनी हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार इंसान सोच सोच कर जो चीजें नहीं भी होनी होती उनकी यानी के आगे चलकर चाहे अच्छा ही होना हो उसके विषय में गलत सोच कर अपनी हेल्थ जरूर खराब करता है। तो जैसे इन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अगर इनके पास जॉब से या कोई भी धन बचता है अगर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इनके आगे चलकर भी अच्छा रहेगा। जैसा कि इन्होंने पूछा कि मेरी आने वाली जिंदगी में फाइनेंस का, तो अगर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो इनकी ली हुई प्रॉपर्टी ऐसा योग रहता है कि नुकसान नहीं देता। हाँ, इतना जरूर रहता है कि जब कभी वर्षफल में प्लानर्स कुछ अच्छे रहते हैं उस वक्त अगर परचेज किया जाए तो कहीं ना कहीं वो जो धन है अच्छी जगह पर ही लगता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इन्हें कभी भी जॉब से नहीं टेंशन लेनी चाहिए, जॉब अच्छा रहेगी, लेकिन इन्हें अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
जी जगजीत जी, और वक्त हो गया है कि हम अपने इस प्रोग्राम से अपने लिसनर से इजाजत मांगे, और अगले सप्ताह हम लोग फिर से उनके सवालों के जवाब लेकर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। उम्मीद रखते हैं कि सभी का आने वाला जो वक्त है बहुत ही अच्छा निकले, सभी खुश रहें और अपने आप को सेहतमंद रखें। जगजीत जी, आपका इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत है आपसे और नमस्कार सभी लिसनर्स को।
नमस्कार जी।
NZ/ ग्राहों का खेल।